ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। अध्यागमन नाको में नेपाली पोर्ट के नाम से अत्याधुनिक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम आज से हुआ शुरू। लोकतांत्रिक की प्रक्रिया के आधार पर ही संसद संचालन करने की नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने जताई प्रतिबद्धता। चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के प्रभाव को नेपाल में फैलने से रोकने के लिए उच्च सतर्कता अपनाने के लिए सरकार वाले निकायों को सरकार ने दिया निर्देश। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 81। अब समाचार विस्तार से। अध्यागमन नाको पर नेपाली पोर्ट नाम का अत्याधुनिक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम को सरकार ने क्रियान्वयन किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के एक्शन रूम में आज नेपाली पोर्ट का उद्घाटन किया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय में विदेशियों के नेपाल आगमन, बास और प्रस्थान को सरल, सुरक्षित और सूचना प्रणाली पर आधारित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल पोर्ट प्रणाली की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा प्राप्ति के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और प्राविधिक विकास के लिए सरकार कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल को चीन और भारत जैसे विकसित अर्थतंत्र के साथ आर्थिक कूटनीति के माध्यम से जोड़ने वाले पूर्वाधारों को विश्व स्तर का बनाने की ओर सरकार का ध्यान केंद्रीय है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यागमन के बायोमेट्रिक्स प्रणाली लागू होने के बाद यात्रुओं की तस्वीर, हस्तरेखा रिकॉर्ड और आंखों की रेटिना समेत पढ़ा जा सकेगा, साथ ही रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। नेपाली पोर्ट त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सहित 12 अध्यागमन नाकों में बायोमेट्रिक्स सहित का सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन में लाया गया है। नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने संघीय संसद सचिवालय सिंह दरबार में आज सभामुख का पदभार ग्रहण किया है। मौके पर सभामुख सापकोटा ने कहा कि संसद नियमित रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालन करने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आई है। उन्होंने कहा कि संसद सचिवालय में दर्ज विधेयक संसद में ले जाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर ही पारित किया जाएगा। सभामुख सापकोटा ने कहा कि एमसीसी जैसी विवादित विषय पर फिलहाल हाल कुछ बोलना आवश्यक नहीं है। सभामुख सापकोटा ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की सदस्यता से अलग होने की घोषणा की है। आज सभामुख सापकोटा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि वे सभामुख की भूमिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाह करेंगे और साथ ही उन्होंने स्वयं के द्वारा नेकपा पार्टी की सदस्यता से अलग होने की घोषणा भी की। नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने नेपाल के लिए चीनी राजदूत हौ यांची से आज मुलाकात की। सभामुख की कार्यकक्ष सिंह दरबार में की गई इस मुलाकात में चीनी राजदूत हौ ने जन कांग्रेस संसद के अध्यक्ष झांसू द्वारा भेजी गई बधाई तथा शुभकामना संदेश सभामुख सापकोटा को हस्तांतरित की। मौके पर चीनी राजदूत हौ यांची ने चीनी जन कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से सापकोटा को चीन के भ्रमण का न्योता भी दिया। इस बात की जानकारी सभामुखी सचिवालय ने दी। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस को नेपाल में फैलने न देने के लिए सरकार ने उच्च सतर्कता अपनाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दी गई निर्देश के पश्चात आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सरकार वाले निकायों को 12 सूत्रीय निर्देश दिया है। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के मद्देनजर नेपाल के पर्यटन क्षेत्रों एवं जनस्वास्थ्य में इसका नकारात्मक प्रभाव ना हो, इस वजह से पूर्व सतर्कता अपनाने, जनचेतना और समन्वय के लिए इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। इस बात की जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता रुद्र सिंह तामांग ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि आदिवासी जनजाति के हक, अधिकार, परम्परा, संस्कृति और पहचान को स्थापित करने का मुख्य आधार संविधान ही है। नेपाल लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ और आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल की एकता घोषणा समारोह में अध्यक्ष प्रचण्ड ने कहा कि नेपाल एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि सरकार अपनी जमीन खुद ही बनाने में प्रतिबद्ध है। दो वर्ष की अवधि में मंत्रालय से हुए मुख्य उपलब्धियों को सार्वजनिक करने के लिए आज मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अर्याल ने कहा कि जल्द ही नेपाल का नया नक्शा सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही मंत्री अर्याल ने यह भी कहा कि समृद्ध नेपाल का मुख्य आधार ही जनता की जमीन है और इसको बांज रखने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने संघीय निजामती सेवा के गठन, संचालन और सेवा शर्त के संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक के विषय में और गृह कार्य और न्याय कानून तथा संसदीय मामला मंत्रालय और समिति के सचिवालय को निर्देशन दी है। समिति की आज की बैठक में राजपत्रांकित व अनंकित और किस तरह तक की कर्मचारियों को यूनियन में आबद्ध किया जाए, इस विषय पर सांसदों के बीच सहमति नहीं हो पाई। गौरतलब है कि कुछ सांसदों ने निजामती यूनियन की व्यवस्था को ही हटाने की मांग की। सभापति शशि श्रेष्ठ ने सांसदों द्वारा रखे विचारों के आधार पर दूसरी बैठक में और गृह कार्य कर मस्यौदा लाने का निर्देशन दिया। ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए सामान भेजने और अमेरिका, कनाडा लगायत के देशों में वीसा लगा देने के एवज पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के चार लोगों को आज परसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झूठा आश्वासन देकर ठगी करने के आरोप में बारा की महागढ़ीमाई नगर पालिका 9 के 29 वर्षीय रोशन सिंह, विशाल सिंह, बीरगंज महानगर पालिका 15 के फारूक आलम और भारत कोलकाता के फिलहाल बीरगंज में रेंट पर रहने वाले सभी भक्त को गिरफ्तार कर परसा पुलिस ने आज साझा किया है। गोसाईकुंड पदयात्रा में जाने के क्रम में नुआकोट के टुपचेश्वर गांव पालिका 1 की घ्यांग फेदी से लापता हुए दो युवक का शव आज मिला है। बीते माह 3 गते लापता हुए सिंधुपाल चौक हेलम्बू के 17 वर्षीय बांगेल तामांग और काठमांडू जोरपाटी के 20 वर्षीय जापान तामांग की बर्फ में दबकर मौत हो गई थी। ये जानकारी गांव पालिका के अध्यक्ष योविंद्र सिंह तामांग ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में कोरोना वायरस महामारी का रूप लेता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई, जबकि 3,000 लोगों के इससे पीड़ित होने की खबर है। इनमें से 350 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं वुहान में मौजूद भारतीय छात्रों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। चीन में फैली इस बीमारी को निमोनिया का एक नया प्रकार बताया जा रहा है, जिसे 2019 एनसीओवी नाम दिया गया है। भारत ने कहा है कि चीन में पैदा हुई स्थिति पर उसकी पूरी नजर है। भारतीय दूतावास वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित वुहान शहर में मौजूद 250 भारतीयों, ज्यादातर छात्र, के संपर्क में हैं। सभी भारतीयों के स्वस्थ और सुरक्षित होने की खबर है। बीमारी का केंद्र वुहान सहित हुबेई प्रांत के 17 अन्य शहरों को बताया जा रहा है, जहां वायरस ने सबसे अधिक लोगों की जान ली है। चीन ने वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिक जू बेवो ने कहा कि प्राथमिक तौर पर इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। कोरोना वायरस फैलने की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे चीन ने कल देश के रेस्तरां और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वन्य जीवों के कारोबार पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि वन्य जीवों वाले मांस के बाजार से इंसानों में इसका संक्रमण फैला है। फ्रांस की कार निर्माण कंपनी पीएस ने शनिवार को कहा कि वह वुहान से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाएगी। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों को वुहान से निकलने की प्रक्रिया चीन के अधिकारियों और फ्रांस के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की मदद से पूरी की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वुहान स्थित वाणिज्य दूतावास में मौजूद कर्मचारियों को अमेरिका स्थानांतरित करेगा। इसके लिए 28 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को के लिए एक फ्लाइट की उसने व्यवस्था की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। अध्यागमन नाकों में नेपाली पोर्ट के नाम से अत्याधुनिक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम आज से हुआ शुरू। लोकतांत्रिकी प्रक्रिया के आधार पर ही संसद संचालन करने की नवनियुक्त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा ने जताई प्रतिबद्धता। चीन में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस के प्रभाव को नेपाल में फैलने से रोकने के लिए उच्च सतर्कता अपनाने के लिए सरकार वाले निकायों को सरकार ने दिया निर्देश। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वाले की संख्या पहुंची 81। के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।